नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। 11th आवर सिस्प स्टडी गाइड थर्ड एडिशन सिस्प प्रमाणन परीक्षा की अंतिम चरण की पुनरावृत्ति के लिए बनाई गई संक्षिप्त संदर्भ पुस्तक है। इसका उद्देश्य विस्तृत पाठ्य पुस्तक की तरह विषय को आरंभ से पढ़ाना नहीं, बल्कि परीक्षा में बार बार आने वाले सिद्धांतों, शब्दावली और निर्णय ढांचों को व्यवस्थित रूप से फिर से सामने रखना है। जोशुआ फेल्डमैन, एरिक कॉनराड और सेथ मिसेनार से संबद्ध यह संस्करण उस समय के सिस्प परीक्षा खाके के अनुरूप 8 डोमेनों में सामग्री रखता है। इनमें सुरक्षा जोखिम प्रबंधन, एसेट सुरक्षा, सुरक्षा इंजीनियरिंग, नेटवर्क सुरक्षा, पहचान एवं पहुंच प्रबंधन, परीक्षण, संचालन और सॉफ्टवेयर विकास सुरक्षा शामिल है। पुस्तक की विशिष्टता इसकी चयनात्मकता है। यह हर विषय के गहरे तकनीकी विवरण के बजाय उन अवधारणाओं पर जोर देती है जिनसे परीक्षार्थी सुरक्षा पेशेवर की दृष्टि से उचित विकल्प पहचान सके। इसलिए इसे प्राथमिक अध्ययन सामग्री के स्थान पर पहले से पढ़े हुए पाठ्यक्रम को संक्षेप में जोड़ने और परीक्षा से ठीक पहले ज्ञान की कमियां पहचानने वाले साधन के रूप में समझना अधिक उपयुक्त है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, जोखिम प्रबंधन को पूरे सिस्प ढांचे की आधारभूत भाषा के रूप में रखना। पुस्तक का पहला डोमेन सुरक्षा जोखिम प्रबंधन से आरंभ होता है और यह क्रम केवल पाठ्यक्रम संबंधी औपचारिकता नहीं है। सिस्प प्रश्नों में तकनीकी नियंत्रण का मूल्यांकन अक्सर उसके व्यावसायिक उद्देश्य, जोखिम में कमी और शासन व्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। इसलिए जोखिम की पहचान, आकलन, उपचार और स्वीकार्यता जैसे विचार बाकी डोमेनों को समझने का आधार बनते हैं। संक्षिप्त अध्ययन गाइड के रूप में पुस्तक पाठक को यह याद दिलाती है कि सुरक्षा का सही निर्णय हमेशा सबसे जटिल या सबसे महंगा नियंत्रण चुनना नहीं होता। उपयुक्त निर्णय वह है जो परिसंपत्ति के मूल्य, संभावित प्रभाव, खतरे और संगठन की जोखिम सहनशीलता के अनुरूप हो। नीति, मानक, प्रक्रिया, दिशा निर्देश, अनुपालन और कार्मिक सुरक्षा जैसे विषय इसी प्रबंधकीय दृष्टि से जुड़े हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह उपयोगी है क्योंकि कई विकल्प तकनीकी रूप से संभव हो सकते हैं, पर उनमें से केवल एक संगठनात्मक शासन और जोखिम प्राथमिकता के अनुरूप होता है। पुस्तक का संक्षिप्त रूप यहां लाभ देता है क्योंकि यह पाठक को बिखरे तथ्यों के बजाय निर्णय के क्रम पर ध्यान केंद्रित कराता है। फिर भी वास्तविक कार्यस्थल पर जोखिम विश्लेषण लागू करने के लिए पाठक को संगठन की प्रक्रिया, कानूनी दायित्व और व्यापारिक संदर्भ का अतिरिक्त अभ्यास चाहिए। दूसरा, एसेट सुरक्षा और सुरक्षा इंजीनियरिंग में नियंत्रणों का जीवन चक्र। एसेट सुरक्षा और सुरक्षा इंजीनियरिंग वाले भाग सुरक्षा को केवल नेटवर्क उपकरणों तक सीमित नहीं मानते। डेटा, प्रणालियां, मीडिया, सुविधाएं और उनके साथ जुड़ी प्रक्रियाएं सभी संरक्षित परिसंपत्तियां हैं। एसेट सुरक्षा का मुख्य प्रश्न यह है कि जानकारी का वर्गीकरण कैसे हो, उसका स्वामी कौन हो, उसे कितने समय तक रखा जाए और अंत में सुरक्षित रूप से नष्ट कैसे किया जाए। यह जीवन चक्र दृष्टि गोपनीयता की जिम्मेदारी को डेटा बनने से लेकर उसके निपटान तक फैलाती है। इसके बाद सुरक्षा इंजीनियरिंग नियंत्रणों की डिजाइन पर ध्यान ले जाती है। सुरक्षित डिजाइन में भरोसे की सीमाएं, न्यूनतम विशेषाधिकार, पृथक्करण, भौतिक सुरक्षा और क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा जैसे सिद्धांत महत्वपूर्ण होते हैं। परीक्षा में इन्हें अलग अलग परिभाषाओं की सूची की तरह नहीं, बल्कि किसी प्रणाली की विफलता घटाने वाले परस्पर सहायक उपायों की तरह देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, वर्गीकृत डेटा पर पहुंच नियंत्रण पर्याप्त नहीं होगा यदि बैकअप, मीडिया निपटान या कुंजी प्रबंधन कमजोर हो। पुस्तक का संक्षेपण पाठक को इन संबंधों की त्वरित पुनरावृत्ति देता है। इसकी सीमा यह है कि आधुनिक क्लाउड संरचनाओं या विशेष इंजीनियरिंग कार्यान्वयन की गहराई के लिए अलग अद्यतन स्रोतों की आवश्यकता होगी। तीसरा, संचार और नेटवर्क सुरक्षा में परतों, प्रोटोकॉलों और विभाजन की परीक्षा दृष्टि। संचार और नेटवर्क सुरक्षा वाला डोमेन उन अवधारणाओं को समेटता है जिनसे डेटा को यात्रा के दौरान सुरक्षित रखने की योजना बनती है। नेटवर्क सुरक्षा को समझने के लिए केवल किसी एक उपकरण का नाम याद रखना पर्याप्त नहीं है। पाठक को यह देखना होता है कि नेटवर्क की परतें, संचार मार्ग, सीमा नियंत्रण और निगरानी मिलकर हमले की सतह को कैसे घटाते हैं। नेटवर्क विभाजन, सुरक्षित दूरस्थ पहुंच, एनक्रिप्शन, वायरलेस सुरक्षा और प्रोटोकॉल संबंधी जोखिम इसी व्यापक सोच के हिस्से हैं। पुस्तक की अंतिम समय वाली शैली यहाँ विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है क्योंकि यह परीक्षा के लिए जरूरी शब्दों और नियंत्रणों के अंतर को जल्दी ताजा करती है। मसलन, गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता के उद्देश्य अलग हैं, इसलिए उनके लिए चुना गया नेटवर्क नियंत्रण भी अलग कारण से काम करता है। विभाजन किसी घुसपैठ के फैलाव को सीमित कर सकता है, जबकि एन्क्रिप्शन संदेश पढ़े जाने का जोखिम घटाता है। सिस्प शैली के प्रश्नों में अक्सर प्राथमिक नियंत्रण, सबसे उपयुक्त नियंत्रण या सर्वोत्तम अगला कदम पूछा जाता है। इस कारण तकनीकी तथ्य को व्यावसायिक प्रभाव और रक्षा की परतों से जोड़ना जरूरी है। पुस्तक एक कुशल पुनरावृत्ति उपकरण है, लेकिन नेटवर्क तकनीक तेजी से बदलती है, इसलिए परीक्षार्थी को वर्तमान परीक्षा रूपरेखा और प्रचलित तकनीकी मार्गदर्शन से इसकी प्रासंगिकता जांचनी चाहिए। चौथा, पहचान और पहुंच प्रबंधन में व्यक्ति, प्रमाणन और अनुमति का अलगाव। पहचान और पहुंच प्रबंधन डोमेन इस बुनियादी प्रश्न पर केंद्रित है कि सही व्यक्ति या प्रणाली को सही संसाधन तक सही स्तर की पहुंच कैसे मिले। इस विषय में पहचान स्थापित करना, प्रमाणन करना, अनुमति देना और गतिविधियों का लेखा रखना अलग चरण है। इन चरणों का अंतर समझना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी उपयोगकर्ता का नाम ज्ञात होना यह सिद्ध नहीं करता कि वह वास्तव में वही व्यक्ति है, और सफल प्रमाणन यह भी सिद्ध नहीं करता कि उसे हर संसाधन की अनुमति मिलनी चाहिए। पुस्तक के संक्षिप्त ढांचे में पहुंच नियंत्रण मॉडल, न्यूनतम विशेषाधिकार, भूमिका आधारित अधिकार और जवाबदेही जैसे विचारों की पुनरावृत्ति का महत्व है। इनका व्यावहारिक तर्क भी स्पष्ट है। सीमित अधिकार गलती या दुरुपयोग से होने वाले नुकसान की सीमा कम करते हैं, जबकि लेखा और समीक्षा जांच को विश्वसनीय बनाते हैं। पहचान प्रबंधन मानव उपयोगकर्ताओं तक सीमित नहीं है, क्योंकि सेवाओं और प्रणालियों को भी नियंत्रित पहचान और अधिकार चाहिए। परीक्षार्थी के लिए उपयोगी मानसिक क्रम यह हो सकता है कि पहले पहचान और प्रमाणन सत्यापित हो, फिर भूमिका या आवश्यकता के आधार पर अनुमति तय हो, और अंत में गतिविधि दर्ज तथा समीक्षा योग्य हो। यह भाग तकनीकी और प्रशासनिक नियंत्रणों को साथ रखता है। हालांकि किसी विशेष उत्पाद की विन्यास प्रक्रिया सीखना इसका लक्ष्य नहीं है, इसलिए वास्तविक कार्यान्वयन के लिए उत्पाद दस्तावेज और प्रयोगशाला अभ्यास अलग से जरूरी रहेंगे। अंत में परीक्षण, सुरक्षा संचालन और सॉफ्टवेयर विकास को निरंतर आश्वासन की श्रृंखला मानना। अंतिम तीन डोमेन सुरक्षा को एक बार लागू कर देने वाली गतिविधि नहीं, बल्कि निरंतर सत्यापन और सुधार की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सुरक्षा, आकलन और परीक्षण यह जांचते हैं कि नियंत्रण वास्तव में अपेक्षित रूप से काम कर रहे हैं या नहीं। सुरक्षा संचालन घटनाओं, निगरानी, लॉग, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और परिचालन अनुशासन से संबंधित है। सॉफ्टवेयर विकास सुरक्षा इस विचार को आगे बढ़ाती है कि कमजोरियों को उत्पादन में पहुंचने के बाद खोजने के बजाय विकास जीवन चक्र में पहले पहचाना और नियंत्रित किया जाए। इन तीनों भागों का साझा तर्क फीडबैक है। परीक्षण से कमी दिखाई देती है, संचालन से वास्तविक वातावरण की घटनाएं और संकेत मिलते हैं, और विकास प्रक्रिया उन सीखों को भविष्य के उत्पादों में शामिल कर सकती है। सिस्प परीक्षा के संदर्भ में यह संबंध महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही उत्तर अक्सर किसी एक तकनीकी कदम से आगे जाकर नीति, जिम्मेदारी, साक्ष्य, परिवर्तन, नियंत्रण और सुधार के क्रम को देखता है। पुस्तक की संक्षिप्त प्रस्तुति पाठक को इन डोमेनों के मुख्य बिंदुओं का तेज मानचित्र देती है, लेकिन इसे प्रयोगात्मक हैंडबुक नहीं समझना चाहिए। पेनिट्रेशन टेस्ट चलाना, घटना प्रतिक्रिया का नेतृत्व करना या सुरक्षित कोड समीक्षा करना व्यावहारिक कौशल है, जिनके लिए अलग प्रशिक्षण, नियंत्रित अभ्यास और अद्यतन पेशेवर प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष में 11th आवर सिस्प स्टडी गाइड उन लोगों के लिए सबसे उपयोगी है जिन्होंने सिस्प पाठ्यक्रम का पर्याप्त प्राथमिक अध्ययन पहले ही कर लिया है और अब 8 डोमेनों को एक सघन व्यवस्थित रूप में दोहराना चाहते हैं। यह विशेष रूप से उन परीक्षार्थियों के अनुकूल है जिन्हें लंबी संदर्भ पुस्तकों से मुख्य सिद्धांत, नियंत्रणों के अंतर और प्रबंधकीय निर्णय क्रम अलग करने में कठिनाई होती है। सुरक्षा पेशेवर भी इसे अपनी मूल शब्दावली और डोमेन कवरेज को ताजा करने वाले संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ इसकी संक्षिप्तता है। यह जोखिम, शासन, डेटा सुरक्षा, इंजीनियरिंग, नेटवर्क, पहचान, परीक्षण, संचालन और विकास सुरक्षा को एक ही परीक्षा केंद्रित ढांचे में जोड़ती है। इससे पाठक यह देख पाता है कि सिस्प केवल तकनीकी उत्पादों का ज्ञान नहीं, बल्कि व्यापारिक जोखिम और नियंत्रणों के बीच संतुलित निर्णय लेने की परीक्षा है। समान श्रेणी की विस्तृत सिस्प गाइडों की तुलना में इसका अंतर व्यापक व्याख्या या बड़ी मात्रा में अभ्यास प्रश्न देना नहीं, बल्कि मुख्य सामग्री से गैर जरूरी विस्तार हटाकर अंतिम पुनरावृत्ति को तेज बनाना है। यही गुण इसकी सीमा भी है। जो व्यक्ति सुरक्षा में नया है या जिसे विषयों की अवधारणात्मक नींव और अधिक उदाहरण चाहिए, उसे पहले विस्तृत अध्ययन सामग्री, आधिकारिक वर्तमान परीक्षा रूपरेखा और अभ्यास प्रश्नों का सहारा लेना चाहिए। चूंकि यह 3rd edition पुराना है, पाठक को वर्तमान से इस परीक्षा डोमेन और उद्देश्यों से अंतर अवश्य जांचना चाहिए। सही स्थिति में यह पुस्तक ज्ञान को संक्षेप में संगठित करने वाला प्रभावी अंतिम चरण है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जॉशुआ फेल्डमैन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।